योएल की पुस्तक तथा लाओदीकियाई सप्तम दिवसीय एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 40। संख्या 40।
पतरस प्रतीकात्मक रूप से तीसरी घड़ी में कैसरिया फिलिपी में था और कैसरिया मरितिमा तथा नौवीं घड़ी की ओर मार्ग में था। मत्ती और मरकुस के अनुसार 6 दिन बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना रूपांतरण के पर्वत पर थे। लूका के अनुसार ये 8 दिन थे। पानियम और उस पर्वत के बीच कैसरिया फिलिपी में अधोलोक के फाटकों से लेकर क्रूस की मृत्यु तक और बीच मार्ग में रूपांतरण के पर्वत पर एक पड़ाव के साथ पानियम से रविवार के कानून तक 3 चरण, आरंभ में कैसरिया, मध्य में पर्वत और अंत में कैसरिया। आरंभ में अधोलोक, अंत में मृत्यु और मध्य में परमेश्वर की महिमा। अल्फा का एक विद्रोह जिसका प्रतिनिधित्व अधोलोक के फाटकों द्वारा होता है और ओमेगा का एक विद्रोह जिसका प्रतिनिधित्व परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु द्वारा होता है। कैसरिया फिलिपी ही नींव है, क्योंकि वहीं मसीह ने उस चट्टान की पहचान की जिस पर वे अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे। रूपांतरण का पर्वत दूसरा चरण है जहां मंदिर का निर्माण संपन्न होता है और शिरोशिला स्थापित की जाती है। इसके उपरांत क्रूस पर न्याय का तीसरा चरण आया
और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सचमुच कहता हूं कि यहां खड़े हुए कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आते न देख ले। और 6 दिन बाद यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और उन्हें अकेले अलग करके एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हो गया और उसके वस्त्र ऐसे चमकदार हो गए कि हिम के समान अत्यंत श्वेत थे, ऐसे कि पृथ्वी पर कोई धोबी इन्हें इतना श्वेत नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनके सम्मुख प्रकट हुए और वे यीशु से बातचीत कर रहे थे।
और पतरस ने उत्तर देकर यीशु से कहा, हे गुरु, हमारे लिए यहाँ होना अच्छा है, तो हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
क्योंकि उसे ना मालूम था कि क्या कहे, क्योंकि वे अत्यंत भयभीत थे।
और एक बादल ने उन्हें आच्छादित कर लिया और उस बादल से एक वाणी निकली जो कहती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। और अचानक जब उन्होंने चारों ओर देखा तो यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी मनुष्य को नहीं देखा। और जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो उसने उन्हें आज्ञा दी कि जो बातें उन्होंने देखी हैं उन्हें किसी से न कहें जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे। और उन्होंने वो बात अपने तक ही रखी और आपस में विचार विमर्श करते रहे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। मरकुस 9:1-10।
पर्वत पर पतरस प्रस्ताव करता है कि मूसा मसीह और एलिया के लिए एक मंडप स्थापित किया जाए।
मूसा मृत्यु से होकर गुजरा, परंतु मीकाएल उतर आया और इससे पहले कि उसकी देह सड़न देखती उसे जीवन प्रदान किया। शैतान ने उस देह को अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न किया ये दावा करते हुए कि वो उसकी है, परंतु मीकाएल ने मूसा को पुनर्जीवित किया और उसे स्वर्ग में ले गया। शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध कठु निंदा की ये आरोप लगाते हुए कि उसका शिकार उससे छीन लिए जाने की अनुमति देकर वो अन्यायी है। परंतु मसीह ने अपने विरोधी को डांटा नहीं, यद्यपि उसके ही प्रलोभन के कारण परमेश्वर का दास गिर पड़ा था। उसने नम्रता से उसे अपने पिता पर छोड़ दिया ये कहते हुए, प्रभु तुझे डांटे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जो उसके साथ खड़े थे उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। रूपांतरण के समय ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। वहां यीशु का मुखमंडल बदल गया और सूर्य के समान चमका, उसके वस्त्र श्वेत और दीप्तिमान थे। मूसा वहां उपस्थित थे ताकि वे उनका प्रतिनिधित्व करें जो यीशु के दूसरे प्रकट होने पर मृतों में से जिलाए जाएंगे, और एलिया जिन्हें बिना मृत्यु देखे उठा लिया गया था ने उनका प्रतिनिधित्व किया जो मसीह के दूसरे आगमन पर अमरता में परिवर्तित किए जाएंगे और बिना मृत्यु देखे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। शिष्यों ने आश्चर्य और भय के साथ यीशु की उत्कृष्ट महिमा और उस मेघ को जिसने उन्हें आच्छादित कर लिया था देखा और उन्होंने परमेश्वर का स्वर भयावह महिमा में ये कहते हुए सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। अर्ली राइटिंग्स 116.
रूपांतरण का पर्वत तीन डेरों को चिन्हित करता है, प्राचीन इसराइल के आरंभ में मूसा का डेरा, मसीह का डेरा जो उनके देहधारण द्वारा निरूपित है, और वो डेरा अर्थात 144,000 जिसका प्रतिनिधित्व एलिया करते हैं। 144,000 वे हैं जो मसीह का दूसरा आगमन देख लेने तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखते। वही पर्वत उस बिंदु की पहचान कराता है जहां 144,000 पर मुहर अंकित की जाती है। 144,000 का तंबू प्रतिरूपात्मक झोपड़ियों के पर्व में स्थापित किया जाता है। वो पर्वत ये इंगित करता है कि जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखते वे कौन हैं, और वो तीन साक्षी स्थापित करता है कि जब वे पर्वत पर परमेश्वर की महिमा देखें तो वही प्रतिरूपात्मक झोपड़ियों का पर्व है। उन्हें एलिया के मंडप के रूप में उठाया जाता है, जिसका खड़ा किया जाना 2023 में आरंभ हुआ, जब मूसा और एलिया दोनों का पुनरुत्थान हुआ। पहले आधार रखा गया, वही एकमात्र आधार जो रखा जा सकता है, और वो आधार मसीह है, कोने का पत्थर और आधार शिला। फिर शीर्षशिला स्थापित की जाती है जो 144,000 की मुहरबंदी का प्रतीक है, जैसा कि रूपांतरण के पर्वत पर निरूपित है। उस पर्वत पर पतरस, याकूब और यूहन्ना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वास्तव में मृत्यु का स्वाद नहीं चखते। पतरस ने बाद में ये लिपिबद्ध किया कि राजकीय याजकत्व वे हैं जिन्होंने ये चखा है कि प्रभु भला है, और जो एक आत्मिक ग्रह थे उन्होंने जीवन का स्वाद चखा, इसलिए वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखते।
यदि सचमुच तुमने ये चखा है कि प्रभु कृपालु है, जिसके पास तुम आते हो जो एक जीवित पत्थर है, मनुष्यों के द्वारा तो निश्चय ही अस्वीकार किया गया, परंतु परमेश्वर के द्वारा चूना हुआ और बहुमूल्य, तुम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक भवन के रूप में अर्थात एक पवित्र याजकत्व के रूप में निर्मित किए जा रहे हो, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इस कारण शास्त्र में भी ये लिखा है, देखो मैं सियोन में एक प्रधान कोण शिला रखता हूँ, चुनी हुई, बहुमूल्य, और जो उस पर विश्वास करता है वो लज्जित ना होगा। 1 पतरस 2:3-6।
कन्फाउंडेड के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ लज्जित होना है। शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व पतरस करता है, और उनका आनंद उन लोगों के विपरीत ठहराया गया है जिन्होंने लैटर रेन संदेश को अस्वीकार कर दिया। 144,000 के संदर्भ में एक कुंजी, क्योंकि पतरस को राज्य की कुंजियां दी गई थीं, वह प्रधान कोना पत्थर है जो सियोन में रखा गया था। वह पत्थर धर्मियों की दृष्टि में अद्भुत है और इफ्रायम के मद्यपियों के लिए ठोकर का पत्थर है।
जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार किया था वही कोने का प्रधान पत्थर बन गया है। ये यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी आंखों में अद्भुत है। भजन संहिता 122:2-2।
यीशु ने दाख की बारी के दृष्टांत के निष्कर्ष में इन पदों पर टिप्पणी की।
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी शास्त्रों में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना वही कोने का सिरा हो गया है। ये प्रभु की ओर से हुआ है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और उसे ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके फल उत्पन्न करती है, और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, परंतु जिस पर ये गिरेगा उसे ये पीसकर चूर कर देगा। और जब महायाजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांत सुने तो उन्होंने समझ लिया कि वो उनके विषय में कहता है, परंतु जब वे उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे तो वे भीड़ से डरते थे, क्योंकि लोग उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। मत्ती 21:42-56।
जो कोई उस आधारभूत संदेश को ग्रहण करता है वो टूट जाएगा, क्योंकि वो चट्टान मसीह है, और सुसमाचार का कार्य मनुष्य को धूल में नम्र करना है।
विश्वास से धर्मी ठहराया जाना क्या है? ये परमेश्वर का वो कार्य है जिसमें वो मनुष्य की महिमा को धूल में मिला देता है, और मनुष्य के लिए वो करता है जो उसके अपने वश में वो अपने लिए नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपनी स्वयं की शून्यता को देखते हैं तब वे मसीह की धार्मिकता से परिधानित किए जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वे सारे दिन परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करने लगते हैं तब निरंतर निहारने से वे उसी प्रतिरूप में रूपांतरित होते जाते हैं। पुनर्जनन क्या है? ये मनुष्य पर उसकी अपनी वास्तविक प्रकृति प्रकट करना है कि स्वयं में वो कुछ नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 22-17।
जो कोई आधारशिला को अस्वीकार करता है वह नष्ट हो जाता है, जैसा कि द्राक्षा वाटिका के दृष्टांत के यीशु द्वारा किए गए अनुप्रयोग की पूर्ति में प्राचीन इसराइल के साथ हुआ। यहूदियों ने मसीह को अस्वीकार किया, उन्होंने मूसा को भी अस्वीकार किया, क्योंकि यदि वे मूसा पर विश्वास करते तो वे मसीह पर भी विश्वास करते। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार किया और मनुष्यों की आज्ञाओं को सिद्धांत बनाकर सिखाया। मसीह, मूसा और व्यवस्था, ये सभी आधारों के प्रति हैं, और मसीह ही वो एकमात्र नींव है जो डाली जा सकती है। परंतु नींव के रूप में मसीह का निरूपण अनेक प्रतीकों द्वारा किया गया है। मूसा और व्यवस्था दोनों इसी तथ्य के उदाहरण हैं। मसीह ही एकमात्र आधार है, पर इसका अर्थ केवल ये है कि उसके भविष्य सूचक वचन में जो अन्य आधार हैं, वे उसके चरित्र के किसी न किसी पहलू के मात्र प्रतीक हैं।
क्योंकि जो नींव रखी जा चुकी है, अर्थात यीशु मसीह, उसके सिवाय कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं रख सकता। 1 कुरिन्थियों 3:11।
यीशु वचन है, और इस नाते उनके वचन के भीतर निहित नियम स्वयं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण बहन व्हाइट लिखती है कि दशाज्ञाएं मसीह के चरित्र का प्रतिरूप है, वो प्रथम और अंतिम है, और इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने पर ये दर्शाता है कि मसीह सदा किसी वस्तु के अंत को उसके आरंभ के साथ निरूपित करता है। वचन के रूप में वो सत्य भी है, और सत्य एक भविष्यवाणात्मक ढांचा है। जब वो अपने वचन को मुहर बंद करता और उसकी मुहर खोलता है, तब वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। वो कोणाशिला भी है जो शीर्ष शिला बन जाती है। कोणाशिला केवल उसके आधार होने का या इब्रानी शब्द सत्य के प्रथम अक्षर का एक चित्रण है। शीर्ष शिला मंदिर का मुकुटकारक कार्य है, और जब वो सत्य के ढांचे के साथ संरेखित होती है तो शीर्ष शिला कोणाशिला की तुलना में 22 गुना अधिक सामर्थी होती है। जिन्होंने चखा है कि प्रभु भला है, उनकी दृष्टि में ये अद्भुत है कि सत्य के ढांचे के वे सिद्धांत जो कोणाशिला और शीर्ष शिला के साथ संरेखित है, पतरस को दी गई भविष्यवाणात्मक कुंजियों में से एक की पहचान कराते हैं। अल्फा प्रथम अक्षर 1 है, परंतु ओमेगा अंतिम अक्षर 22 है। मिलर के रत्न सूर्य के समान चमकते हैं, परंतु जब धूल झाड़ने वाले व्यक्ति ने रत्नों को एकत्रित किया, वे 10 गुना अधिक दीप्तिमान थे। ये पहचान कि एक भविष्यद्वाणी रेखा का अंत अपने आरंभ के समान ही है, परंतु उससे अधिक सामर्थ्यशाली है, अद्भुत है। ये मसीह के चरित्र का एक तत्व है। ये उन कुंजियों में से एक है जो पतरस को 144,000 को बांधने के लिए दी गईं। पतरस का आत्मिक भवन विलियम मिलर के स्वप्न की पेटिका है, और वो मलाकी का दशमा और भेंटों का भंडार गृह भी है। जब स्वर्ग के छरोखे खोले जाते हैं, एक वर्ग को कक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे वर्ग को पेटिका में डाल दिया जाता है, तथा उसे परमेश्वर की विजयी कलीसिया के श्वेत सूक्ष्म मलमल के वस्त्र दिए जाते हैं।
गंभीरतापूर्वक और सार्वजनिक रूप से यहूदा की प्रजा ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए अपने को प्रतिज्ञाबद्ध किया था, परंतु जब कुछ समय के लिए एज्रा और नहेमिया का प्रभाव हट गया तो बहुत से लोग प्रभु से विमुख हो गए। नहेमिया फारस लौट गए थे। यरूशलेम से उनकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसी बुराइयां धीरे धीरे भीतर घुस आईं जो राष्ट्र को विपत्गामी कर देने की धमकी देती थीं। मूर्ति पूजकों ने न केवल नगर में पैर जमा लिए, वरन अपनी उपस्थिति से उन्होंने स्वयं मंदिर के परिसर को भी अपवित्र कर दिया। मिश्र विवाह के माध्यम से प्रधान याजक एलियाशिब और अम्मोनी तोबिया, जो इसराइल का कटु शत्रु था, के बीच मित्रता हो गई थी। इस अपवित्र संधि के परिणाम स्वरूप एलियाशिब ने तोबिया को मंदिर से संबद्ध एक कक्ष में निवास करने की अनुमति दे दी थी, जो इससे पहले लोगों के दशमांश और भेंटों के भंडार गृह के रूप में प्रयुक्त होता था। इसराइल के प्रति अम्मोनियों और मोआबियों की क्रूरता और विश्वासघात के कारण परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये घोषित किया था कि उन्हें उसकी प्रजा की सभा से सदा के लिए बाहर रखा जाए। देखे व्यवस्था विवरण 23:3-10 से। इस वचन की अवहेलना करते हुए महायाजक ने परमेश्वर के घर के कक्ष में रखी गई भेंटों को बाहर निकाल दिया था ताकि इस निषिद्ध जाति के प्रतिनिधि के लिए स्थान बनाया जा सके। परमेश्वर और उसके सत्य के इस शत्रु पर ऐसा अनुग्रह करके परमेश्वर के प्रति इससे बढ़कर तिरस्कार नहीं दिखाया जा सकता था। फारस से लौटने पर नहीमाया को उस निर्लज्ज अपवित्रीकरण का पता चला और उन्होंने घुसपैठिए को निकाल बाहर करने के लिए तत्काल कदम उठाए। ये बात मुझे अत्यंत शोक हुई, वे कहते हैं, इसलिए मैंने तोबिया का सारा गृहस्थी का सामान उस कक्ष से बाहर फेंक दिया। तब मैंने आज्ञा दी और उन्होंने कक्षों को शुद्ध किया और वहां मैंने फिर से परमेश्वर के भवन के पात्र, अन्नबलि और लोबान लाकर रखे। केवल मंदिर को अपवित्र ही नहीं किया गया था, वरन अर्पणों का भी दुरुपयोग हुआ था। इससे लोगों की दानशीलता में हतोत्साह उत्पन्न हुआ था। वे अपना उत्साह और लगन खो बैठे थे और अपने दशमांश अदा करने में अनिच्छुक हो गए थे। प्रभु के भवन के कोषागारों में पर्याप्त पूर्ति न थी। मंदिर सेवा में नियोजित अनेक गायक और अन्य लोग पर्याप्त निर्वाह न पाने के कारण परमेश्वर का कार्य छोड़कर अन्यत्र श्रम करने चले गए थे। नहिम्यायन को प्रथाओं को सुधारने के लिए कार्य में प्रवृत्त हुए। उन्होंने उन लोगों को एकत्र किया जिन्होंने प्रभु के गृह की सेवा छोड़ दी थी और उन्हें उनके स्थान पर स्थापित किया। इससे प्रजा में विश्वास जागृत हुआ और समस्त यहूदा ने अन्न और नए दाखमधु और तेल का दशमांश लाया। जो पुरुष विश्वास योग्य गिने गए थे उन्हें भंडारागारों पर भंडारी बनाया गया और उनके पद का कार्य अपने भाइयों को वितरण करना था। प्रॉफिट्स एंड किंग्स 6:7-7।
जब नहेम्या ने तोबिया को बाहर निकाल दिया तब उसने उस बात का पूर्व रूप प्रस्तुत किया कि मसीह ने ठीक उसी मंदिर से सिक्का बदलने वालों को निकाल बाहर किया। ये केवल मंदिर की बात नहीं थी अपितु मंदिर के उसी कक्ष की जहां दशमांश संग्रहित किए जाते थे। जब फिलाडेल्फियाई एलियाकीम मैंने लाओदिकियाई शेबना का स्थान लिया तब शेबना वही कोषाध्यक्ष था जिसे दूर के मैदान में फेंक दिया गया।
सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, जा इस कोषाध्यक्ष अर्थात शबना जो घर का अधिकारी है के पास जा और कह, यहां तेरा क्या है और यहां तेरा कौन है कि तूने यहां अपने लिए एक कब्र तराशी है, जैसे कोई ऊंचे स्थान पर अपने लिए कब्र तराशता है और जो अपने लिए चट्टान में एक निवास खोदता है। देख, प्रभु तुझे एक प्रबल बंधुआई के साथ दूर ले जाएगा और निश्चय तुझे लपेट लेगा। वो निस्संदेह तुझे बलपूर्वक घुमाकर एक बड़े देश में गेंद के समान फेंक देगा। वहां तू मरेगा और वहीं तेरे वैभव के रथ तेरे स्वामी के घर की लज्जा बनेंगे। और मैं तुझे तेरे पद से हटा दूंगा और तेरी पदवी से वो तुझे उतार डालेगा। और उस दिन ऐसा होगा कि मैं अपने दास हिल्किया के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा और मैं उसे तेरे वस्त्र से परिधान करूंगा और तेरी करधनी से उसे दृढ़ करूंगा और तेरे शासन को उसके हाथ में सौंप दूंगा और वो यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा और दाऊद के घराने की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा। वो जो खोलेगा उसे कोई बंद ना करेगा और जो वो बंद करेगा उसे कोई ना खोलेगा। और मैं उसे दृढ़ स्थान में खूंटी के समान ठोंक दूंगा और वो अपने पिता के घराने के लिए एक महिमामय सिंहासन होगा और वे उसके ऊपर उसके पिता के घराने की सारी महिमा, संतान और शाखा प्रशाखा सब छोटे छोटे पात्र, प्यालों से लेकर सुराहियों तक के सब पात्र टांगेंगे। उस दिन सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, वो खूंटी जो दृढ़ स्थान में जड़ी है हटा दी जाएगी, काट डाली जाएगी और गिर पड़ेगी और जो बोझ उस पर था वो काट डाला जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। यशाया 22:15-22।
जिस दिन मूर लाउदी कियाए शेबना बाहर कर दिया जाता है, एलियाकीम को विजय कलीसिया का शासन भार सौंपा जाता है। जब मसीह बहुमूल्य रत्नों को ढक देने वाले कूड़ा करकट से 144,000 का मंदिर शुद्ध करते हैं तब वो ये प्रकट करते हैं कि वो शेबना द्वारा निरूपित जनों को आवृत करेगा। स्वर्ग की खिड़कियां खोले जाने से पहले रत्न कूड़ा करकट से ढके हुए थे और जब वो कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है तब वही कूड़ा करकट लज्जा से आवृत हो जाता है। विलियम मिलर का स्वप्न 144,000 की मुहरबंदी का परिचायक है। वही रत्न पेटी का मलाकी का भंडार गृह, पतरस का आत्मिक गृह
और वो एलिया का ढेरा है जिसे पतरस बनाना चाहता था। धूल झाड़ने वाला पुरुष जब वो रत्नों को पेटिका में डालता है तो 144,000 की मुहरबंदी को दर्शाता है। मलाकी उस कसौटी को दर्शाता है जो ये सिद्ध करती है कि परमेश्वर की प्रजा सचमुच उसके पास लौट आई है।
तदुपरांत जो यहुवा का भाई मानते थे वे आपस में प्रायः एक दूसरे से बातें करते रहे और यहुवा ने इस पर ध्यान दिया और सुना, और उसके सम्मुख उन लोगों के लिए जो यहुवा का भाई मानते थे और उसके नाम का चिंतन करते थे स्मरण की एक पुस्तक लिखी गई। वे मेरे होंगे, सेनाओं का यहुवा कहता है, उस दिन जब मैं अपने रत्नों का संग्रह करूंगा और मैं उन्हें बख्श दूंगा जैसे कोई मनुष्य अपने उस पुत्र को बख्शता है जो उसकी सेवा करता है, तब तुम लौटकर धर्मी और दुष्ट के बीच, परमेश्वर की सेवा करने वाले और उसकी सेवा न करने वाले के बीच भेद परखोगे। मलाकी 3:16-18।
लौटना इस खंड का एक प्रमुख शब्द है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी ओर लौटने के लिए बुलाता है, परंतु वो उन लोगों को दशमांश और भेंटे लौटाकर अपनी परीक्षा लेने की चुनौती भी देता है। और एक ऐसा समय भी है जब धर्मी लौटेंगे और ऐसा करते हुए वे भेद करेंगे बुद्धिमानों और मूर्खों के बीच। जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का चिंतन करते थे वे ही 144,000 का की पताका ठहराए जाने वाले हैं। प्रभु का भय प्रथम कसौटी है। अतः जब पद 16 में वेन वे जो प्रभु का भय मानते थे कहा गया है तो वो उस भविष्यवाणीय आख्यान के पूर्ववर्ती भाग की ओर संकेत करता है।
यहोवा कहता है, तुम्हारी बातें मेरे विरुद्ध कठोर रही हैं, तो भी तुम कहते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुम कहते हो, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है और उसकी विधि का पालन करने से और यहोवा सेनाओं के सम्मुख शोक पूर्वक चलने से हमें क्या लाभ? और अब हम घमंडियों को धन्य कहते हैं। हाँ, जो दुष्टता करते हैं वे उन्नत किए जाते हैं। हाँ, जो परमेश्वर को परखते हैं वे भी बच निकलते हैं। मलाकी 3:13-15।
मलाकी कहता है, और अब हम अभिमानियों को धन्य ठहराते हैं, इफ्राम के मध्यपाई घमंड का मुकुट कहलाते हैं। और जब वे ये सोचते हैं कि मूसा और एलिया, वे दो भविष्यद्वक्ता जिन्होंने उन्हें यातना दी थी, मर गए थे, तब वे प्रसन्न होते हैं। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक दूसरे को भेंटें भेजी
और उनकी लाशें उस बड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेंगी जिसे आध्यात्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहा जाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों के लोग 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्रों में रखे जाने की अनुमति नहीं देंगे, और पृथ्वी पर रहने वाले उनके विषय में आनंद करेंगे, हर्ष मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दो भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया था। प्रकाशित वाक्य 11:9-10।
18 जुलाई 2002 से लेकर 2023 तक अभिमानी लोग सुखी रहे हैं। 18 जुलाई 2002 को संदेश प्रभु के विरुद्ध कठोर था। 18 जुलाई 2002 को हम ये नहीं पहचान पाए कि हमने परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध कितनी भयंकर रीति से बोला था। निराश होकर हम प्रतीक्षा के काल में प्रविष्ट हुए जिसका प्रतिनिधित्व इस विलाप से होता है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है और क्या लाभ है कि हमने उसकी विधि का पालन किया है और कि हम सेनाओं के यहोवा के सम्मुख शोकाकुल होकर चले हैं। ये यिर्मयाह के विलाप के समानांतर है जब वो प्रथम निराशा का चित्रण करता है।
मैं ठट्टा करने वालों की सभा में नहीं बैठा, न मैं आनंदित हुआ, तेरे हाथ के कारण मैं अकेला बैठा रहा, क्योंकि तूने मुझे रोष से भर दिया। मेरी पीड़ा निरंतर क्यों है और मेरा घाव असाध्य क्यों है जो चंगा होने से इनकार करता है? क्या तू मेरे लिए सर्वथा झूठे के समान होगा और ऐसे जल के समान जो धोखा देते हैं? यिर्मयाह 15:17-18।
17 जुलाई 2021 की भविष्यवाणी के विषय में हमारे वचन कठोर और हठपूर्वक थे, और तब हमें ये ज्ञात न था कि हम कितनी बुरी रीति से विद्रोह कर चुके थे। उस निराशा के समय विलंब का काल आरंभ हो चुका था जब एक वर्ग शोक कर रहा था और दूसरा वर्ग आनंद मना रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में मलाकी कहता है,
तब जो यहुआ का भय मानते थे वे परस्पर प्रायः बातें करते रहे और यहुआ ने ध्यान दिया और सुना, और उसके सम्मुख एक स्मरण पुस्तक लिखी गई उनके लिए जो यहुआ का भय मानते थे और उसके नाम का चिंतन करते थे। और सेनाओं का यहुआ चंदार कहता है, उस दिन वे मेरे होंगे जब मैं अपने रत्नों को एकत्र करूंगा और मैं उन्हें बख्श दूंगा जैसे कोई मनुष्य अपने उस पुत्र को बख्शता है जो उसकी सेवा करता है।
तब तुम लौटकर धर्मी और दुष्ट के बीच और जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उनके बीच भेद करोगे। मलाकी 3:16-18।
2024 में प्रभु का भाई शंकर के रूप में निरूपित वो आधारभूत परीक्षा आ पहुंची। उस परीक्षा में दो वर्ग प्रकट हुए और इन दोनों वर्गों से बना समूह 3.5 दिनों के दौरान नियमित जूम बैठकों में प्रायः आपस में संवाद करता रहा। प्रभु ने उनकी चर्चाएं सुनी। जो वर्ग प्रभु से डरता था उसने उसके नाम का मनन किया। पालमोनी, यहूदा के गोत्र का सिंह, अल्फा और ओमेगा, सत्य, वचन, अद्भुत भाषाविद, कोने का पत्थर और शिरोशिला, मेमना, स्वर्गीय महायाजक, मंदिर, शिला, जो उस पुस्तक में लिखे गए वे उस मुकुट पर जड़े रत्न होंगे जो महिमा के राज्य के ध्वज चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वो उन रत्नों को एकत्र कर लेता है तब वे लौटते हैं और धर्मी तथा दुष्ट के बीच भेंट करते हैं। जब वो रत्नों को रत्न पेटिका में डालता है तभी ये परखा जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान। मलाकी लिखते हैं,
मेरी ओर लौटो और मैं तुम्हारी ओर लौटूंगा, परंतु तुमने कहा हम किस बात में लौटे? समस्त दशमांश भव भंडार गृह में ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन हो। और अब इसी द्वारा मुझे परखो, सेनाओं के यहोवा कहते हैं, कि क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे नहीं खोल दूंगा और तुम पर ऐसी आशीष उंडेलूंगा कि उसे समेटने के लिए पर्याप्त स्थान न रहेगा।
भंडार गृह ही पेटिका है और दशमांश वे बुद्धिमान कुंवारिया है। भंडार गृह वो परमेश्वर का वचन है जिसे सत्य की एक नई रूपरेखा में स्थापित किया गया है। उस पेटिका में डाले जाने वाले रत्न वे सत्य हैं जो आधी रात की पुकार के संदेश से संबद्ध हैं। दशमांश को मंदिर के एक विशिष्ट कक्ष में रखा जाता था जैसा कि नहेमिया के शुद्धिकरण में निर्दिष्ट है। पेटिका और भंडार गृह अथवा पतरस का आत्मिक भवन परमेश्वर के मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है और रत्न उन मानवीय मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में दिव्यता के साथ संयुक्त है। मानवीय संदेश वाहकों को दिव्य संदेश से पृथक नहीं किया जा सकता। रत्न एक साथ ही परमेश्वर के संदेश वाहक भी है और वही संदेश भी है जिसे वे उद्घोषित करते हैं। दिव्य प्रेरणा प्रायः संदेश और संदेश वाहक को संयुक्त रूप में निरूपित करती हैं।
परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इस समय, जैसे उसने प्राचीन इसराइल को बुलाया था, पृथ्वी पर ज्योति बनकर खड़े रहने के लिए बुलाया है। सत्य के शक्तिशाली कुल्हाड़े अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों के द्वारा उसने उन्हें कलीसियाओं और संसार से अलग कर दिया है ताकि उन्हें अपने साथ पवित्र निकटता में ले आए। उसने उन्हें अपनी व्यवस्था के भंडारी बना दिया है और इस समय के लिए भविष्यद्वाणी की महान सच्चाइयां उनके सुपुर्द की हैं। जैसे पवित्र वचन प्राचीन इसराइल को सौंपे गए थे, वैसे ही ये भी संसार तक पहुंचाए जाने के लिए एक पवित्र न्यास हैं। प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर के संदेशों के प्रकाश को स्वीकार करते हैं और उसके प्रतिनिधि बनकर पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई में चेतावनी सुनाने निकल पड़ते हैं। मसीह अपने अनुयायियों से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो कोई भी यीशु को स्वीकार करता है उससे कलवरी का क्रूस ये कहता है, देखो आत्मा का मूल्य क्या है। सारे जगत में जाकर हर एक सृष्ट प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। किसी भी बात को इस काम में बाधा बनने की अनुमति नहीं दी जानी है। ये समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये अनंतता जितना दूरगामी होना है। मनुष्यों के प्राणों के लिए उनके उद्धार के निमित्त जो बलिदान उसने दिया, उसमें यीशु ने जो प्रेम प्रकट किया, वही उसके सब अनुयायियों को प्रेरित करेगा। टेस्टिमोनीज खंड 5:56-56।
हम अगले लेख में इन अवसरणाओं का संश्लेषण आरंभ करेंगे।
अपने जीवन के पिछले 50 वर्षों में मुझे अनुभव प्राप्त करने के अनमोल अवसर मिले हैं। मुझे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों में अनुभव प्राप्त हुआ है। स्वर्गदूतों को आकाश के बीचों बीच उड़ते हुए संसार को चेतावनी का संदेश सुनाते हुए और इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हुए चित्रित किया गया है। कोई भी इन स्वर्गदूतों की वाणी नहीं सुनता, क्योंकि वे एक प्रतीक हैं जो परमेश्वर की उस प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वर्गीय ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में कार्य कर रही है। पुरुष और स्त्रियां जो परमेश्वर की आत्मा से आलोकित और सत्य के द्वारा पवित्र किए गए हैं, इन तीनों संदेशों को अपने क्रम में उद्घोषित करेंगे। मैंने इस गंभीर कार्य में अपनी भूमिका निभाई है। मेरा लगभग समस्त मसीही अनुभव इसके साथ गुमथा हुआ है। आज भी ऐसे लोग जीवित हैं जिनका अनुभव मेरे समान है। उन्होंने इस समय के लिए प्रकट हो रहे सत्य को पहचाना है। वे महान नेता, प्रभु की सेना के सेनापति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। संदेशों की उद्घोषणा में भविष्यवाणी के प्रत्येक विवरण की पूर्ति हो चुकी है। जिन्हें इन संदेशों की उद्घोषणा में भाग लेने का सौभाग्य लायका प्राप्त हुआ, उन्होंने ऐसा अनुभव प्राप्त किया है जो उनके लिए सर्वोच्च मूल्य का है। और अब जब हम इन अंतिम दिनों के संकटों के मध्य हैं, जब चारों ओर से ये स्वर सुनाई देंगे, यहाँ मसीह है, यहाँ सत्य है, जबकि बहुतों का उद्देश्य हमारे विश्वास की उस नींव को हिला देना है जिसने हमें कलीसियाओं से और संसार से बाहर निकालकर संसार में एक विशिष्ट प्रजा के रूप में खड़ा किया है, तब यूहन्ना के समान हमारा साक्ष्य ये होगा, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने निहारा और जिसे हमारे हाथों ने स्पर्श किया जीवन के वचन के विषय में, जो हमने देखा और सुना है वही हम तुम्हें घोषित करते हैं ताकि तुम भी हमारे साथ संगति रखो। मैं उन बातों की गवाही देता हूँ जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें मैंने सुना है और जीवन के वचन के विषय के में जिन्हें मेरे हाथों ने स्पर्श किया है, और ये साक्ष्य मैं जानता हूँ कि पिता और पुत्र का है। हमने देखा है और गवाही देते हैं कि सत्य के प्रतिपादन के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति साथ रही है, कलम और वाणी से चेतावनी देती रही है और संदेशों को उनके क्रम में प्रदान करती रही है। इस कार्य से इनकार करना पवित्र आत्मा से इनकार करना होगा और हमें उस समूह में ठहराएगा जिन्होंने बहकाने वाली आत्माओं पर ध्यान देकर विश्वास से भटक गए हैं। शत्रु समस्त साधन उपाय काम में लाएगा ताकि विश्वासियों के हृदयों से हमारे विश्वास के स्तंभ हों, अतीत के उन संदेशों पर रखा गया भरोसा उखाड़ फेंके, वे संदेश जिन्होंने हमें अनंत सत्य के उच्च धरातल पर स्थापित किया है और इस कार्य की स्थापना कर उसे उसका चरित्र प्रदान किया है। इज़राइल के प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों का नेतृत्व किया है और उन पर स्वर्गोत्पन्न सत्य का उद्घाटन किया है। उसकी वाणी सुनी गई है और अब भी सुनाई देती है, ये कहती हुई, आगे बढ़ो, बल से बल की ओर, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर, महिमा से महिमा की ओर। कार्य सुदृढ़ हो रहा है और विस्तार पा रहा है, क्योंकि इज़राइल का प्रभु परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक है। जो लोग सत्य को केवल सैद्धांतिक रूप से मानो उंगलियों के पोरों से ही पकड़े हुए हैं, जिन्होंने उसके सिद्धांतों को आत्मा के अंतरतम पवित्र स्थान में प्रविष्ट नहीं कराया परंतु जीवनी भूत सत्य को बाह्य प्रांगण में ही रख छोड़ा है, वे इस प्रजा के अतीत के इतिहास में जिसने उन्हें वैसा बनाया है जैसे वे हैं और जिसने उन्हें संसार में गंभीर दृढ़ प्रतिज्ञ मिशनरी कार्यकर्ताओं के रूप में स्थापित किया है, कुछ भी पवित्र नहीं देखेंगे। इस समय का सत्य बहुमूल्य है, परंतु जिनके हृदय चट्टान मसीह यीशु पर गिरकर नहीं टूटे हैं, वे न तो देखेंगे और न ही समझेंगे कि सत्य क्या है। वे वही स्वीकार करेंगे जो उनके विचारों को भाता है, और जो नींव डाली गई है उसके अतिरिक्त वे एक और नींव गढ़ने लगेंगे। वे अपने ही दंभ और आत्ममान को बढ़ावा देंगे, ये सोचते हुए कि वे हमारे विश्वास के स्तंभों को हटाने और उनकी जगह अपने गढ़े हुए स्तंभ प्रतिस्थापित करने में समर्थ है। ये तब तक बना रहेगा जब तक समय विद्यमान रहेगा। जो कोई बाइबल का गहन विद्यार्थी रहा है वह उन लोगों की गंभीर स्थिति को देखेगा और समझेगा जो इस पृथ्वी के इतिहास के समापन दृश्यों में जी रहे हैं। वे अपनी असमर्थता और निर्बलता का अनुभव करेंगे और इसे अपना प्रथम कर्तव्य ठहराएंगे कि उनके पास केवल धर्मपरायणता का बाह्य रूप मात्र न हो परंतु परमेश्वर के साथ एक सजीव संबंध हो। जब तक मसीह जो महिमा की आशा है उनके भीतर रूप न ले, तब तक वे विश्राम करने का साहस नहीं करेंगे। अपना मैं मर जाएगा, घमंड आत्मा से निकाल दिया जाएगा और उनमें मसीह की नम्रता और मृदुता होगी। नोटबुक लीफलेट्स 60 सकती।